पूर्व पाठ में अनुमान से हमने ये सिद्ध किया कि बुद्धि आदि जो हैं वो गुण होते हैं। अभी तक अनुमान करके हमने यही सिद्ध किया है। ये अलग चीज़ है कि मैंने उसके अतिरिक्त भी बता दिया, लेकिन ग्रंथ की पंक्ति के अनुसार अभी तक इतना ही सिद्ध हुआ कि बुद्धि आदि गुण होते हैं, क्योंकि वो अनित्य भी हैं और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य हैं रूप आदि की तरह, इसीलिए वो बुद्धि आदि जो हैं वो गुण होते हैं। और गुण जो होता है वह गुणी आश्रित होता है, गुणी कहते हैं द्रव्य को, वह द्रव्य पर आश्रित होता है। इतना ही अभी तक फाइनल हुआ है। वह किस द्रव्य पर आश्रित होता है ये फाइनल नहीं हुआ है, तो इसको फाइनल करने के लिए आगे की पंक्ति जो है उसको पढ़ना होगा। फिर से मैं बता दूं कि न्याय दर्शन में 9 प्रकार का द्रव्य माना गया है, और इन्हीं 9 प्रकारों के द्रव्यों पर जो है गुण आश्रित होते हैं। द्रव्य को गुणी शब्द से भी कहा जाता है, ये दोनों पर्यायवाची हैं, गुणी और द्रव्य। अब अनुमान के द्वारा ये तो सिद्ध हो गया कि रूप रस आदि की तरह जो है बुद्धि आदि जो है वह गुण है, और गुण जो है वह गुणी पर आश्रित होता है, गुणी में निहित रहता है। इतना सिद्ध हुआ। अब हमें सिद्ध करना है कि आत्मा नाम के का जो गुणी है, आत्मा नाम का जो द्रव्य है उसी में ये गुण आश्रित होते हैं, अन्य द्रव्य में आश्रित नहीं होते। वही बात पंक्ति में कह रहे हैं कि तत्र बुद्ध्यादयो 9 गुणा भूतानाम। अब ये जो 9 द्रव्य हैं इसमें से 5 जो द्रव्य हैं उसको भूत कहा जाता है। आपने सुना होगा पांच भौतिक शरीर, माने यह जो शरीर है वह पंचभूतों से बना हुआ है। वह पंचभूत कौन है, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये जो 5 हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तेज कहते हैं अग्नि को और बाकी चीज तो आप जानते ही हैं, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 हैं इनको भूत कहा जाता है। और इन 5 के अलावे इसमें 2 ग्रुप है, द्रव्य में जो है 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है भूत का, माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 का, और दूसरा ग्रुप है काल, दिक् और मन का। ठीक है, तो पहले ये सिद्ध कर रहे हैं, माने आत्मा भी है लेकिन आत्मा तो उसको अलग सिद्ध करना है ना, तो आत्मा को अभी हम साइड में रखते हैं। अभी 9 द्रव्य में से 8 द्रव्य को ही लेकर के चलते हैं, और इन 8 में 2 ग्रुप कर दिया इन्होंने केशव मिश्र ने। एक ग्रुप किया भूत वाला, माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश वाला, और दूसरा ग्रुप कर दिया काल, दिक् और मन वाला। और बारी बारी से ये सिद्ध करेंगे कि ये जो बुद्धि आदि गुण हैं ये भूत में नहीं रहते हैं, भूत नाम के द्रव्य में नहीं रहते हैं, पृथ्वी, जल आदि द्रव्य में नहीं रहते हैं। और फिर सिद्ध करेंगे कि यह जो बुद्धि आदि गुण हैं ये दिक, काल और मन नाम के द्रव्य में भी नहीं रहते हैं। इस तरह से पहले ये सिद्ध करके कि ये 8 में नहीं रहते हैं, तो गुण है और गुण है, तो गुण है तो किसी न किसी में तो रहेगा, इन 8 में रहते नहीं हैं, तो नवा कोई द्रव्य है जिसमें ये बुद्धि आदि गुण रहते हैं, वो नवा द्रव्य जो है वो कौन है, तो वह आत्मा नाम का ही द्रव्य है। चलिए, तो पंक्ति में कहा तत्र बुद्धियादियो 9 गुणा भूतानाम, ताकि भूतों के ये बुद्धि आदि गुण नहीं होते। फिर से आदि लाऊं, बुद्धि आदि में क्या लेना है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये जो बुद्धि आदि गुण हैं ये भूत के गुण नहीं है, माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 भूत है इनके गुण नहीं है। क्यों नहीं है जी, तो आगे कहते हैं मानस प्रत्यक्षत्वात्, माने ये बुद्धि आदि गुणों का मानस प्रत्यक्ष होता है, माने मन में इसका जो है साक्षात्कार होता है, जबकि भूत में रहने वाला जो गुण होता है ना उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, मानस प्रत्यक्ष नहीं होता। अब जैसे देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में रहने वाला गुण क्या है, गंध, तो गंध का जो प्रत्यक्ष होगा वो घ्राण प्रत्यक्ष होगा, नासिका इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा उसका। ऐसे ही हम जल जो है, जल में कौन सा गुण रहता है, तो शीत स्पर्श बत्व रहता है। अब शीत स्पर्श बत्व जो का जो प्रत्यक्ष होगा वो किससे होगा, तो त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा, मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसी तरह इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि आदि जो गुण है वह भूत का गुण नहीं माना जा सकता, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी जल आदि में जो गुण रहता है ना उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, जबकि बुद्धि आदि का जो है मानस प्रत्यक्ष होता है। वे कहा ये ही भूतानाम गुणाः ते न मनसा गृह्यन्ते यथारूपादयः। जो भूत के गुण होते हैं उसका मन से ग्रहण नहीं होता, उसका मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे रूप आदय माने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये इनके पांचों भूतों के गुण हैं, इनका किसी का भी मानस प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि भूत का गुण वही होगा जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा, जिसका मानस प्रत्यक्ष होगा वह कभी भी भूत का गुण नहीं हो सकता। इस तरह से पहला जो ग्रुप है द्रव्य का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, उसमें जो है इन्होंने सिद्ध किया अनुमान, ये भी अनुमान के द्वारा ही सिद्ध किया गया कि बुद्ध्यादियो नौ गुणा भूतानाम मानस प्रत्यक्षत्वात्। तो मानस प्रत्यक्षत्व रूपी हेतु से ये सिद्ध किया गया कि बुद्धि आदि जो है पृथ्वी जल आदि के गुण नहीं है। अब दूसरा जो ग्रुप है उसमें सिद्ध करना है कि ये बुद्धि आदि गुण उनके भी नहीं है। वो दूसरा ग्रुप कौन था, दिक काल और मन। उसके लिए कहते हैं कि नापि दिक काल मनसाम गुणाः। ये जो बुद्धि आदि गुण है ये दिक में रहने वाला, काल में रहने वाला और मन में रहने वाला, ये जो तीन द्रव्य हैं इन तीनों द्रव्य में भी रहने वाले ये गुण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विशेष गुणत्वात्। ये जो बुद्धि आदि गुण है ये विशेष गुण है। विशेष गुण है मतलब किसी एक में ही रहने वाले गुण है, और सामान्य गुण क्या होता है, जो कि एक से अधिक में रहता है। तो दिक काल और मन में रहने वाला जो गुण है, जैसे संख्या है, परिमाण है, पृथक्त्व है, ये सब जो गुण है ये सब दिक काल और मन के गुण होते हैं। तो ये जो संख्यादि गुण है ये सामान्य गुण होते हैं, दिक काल आदि द्रव्य में रहने वाला जो गुण है वह कौन से गुण रहते हैं, साधारण गुण रहते हैं उसमें, और जबकि ये बुद्धि आदि जो है ये विशेष गुण है, ये इसमें नहीं रह सकता। वही कहा गया कि ये ही दिक काल आदि गुणा, ये जो भी दिक काल आदि के गुण होते हैं जैसे संख्या परिमाण आदि, नौते विशेष गुणा, वे कभी विशेष गुण नहीं होते। ते ही सर्व द्रव्य साधारण गुणा, वे जो संख्या आदि गुण होते हैं दिक काल आदि में रहने वाले, वो द्रव्य साधारण गुण होते हैं, वो एक से अधिक द्रव्यों में रहने वाले गुण होते हैं। जबकि बुद्धि आदि जो है वह एक में ही रहने वाला गुण है, विशेष गुण है, इसीलिए वह दिक काल आदि द्रव्य में भी नहीं रह सकते। आगे फिर कहा बुद्ध्यादयस्तु विशेष गुणाः। अब इतना तो यहाँ पर अब सिद्ध हुआ, पहले के पाठ में ये सिद्ध हुआ था कि बुद्धि आदि जो है वह गुण है, और गुण जो है किसी गुणी में ही आश्रित होता है। और अभी जो यहाँ पर बताया गया उसमें ये बताया गया अनुमान के द्वारा, मानस प्रत्यक्षत्व हेतु से बताया गया कि भूत का गुण ये बुद्धि आदि नहीं है, और विशेष गुणत्व हेतु से बताया गया कि दिक काल मन का भी ये बुद्धि आदि गुण नहीं है। तो इन आठ द्रव्यों में रहने वाला बुद्धि आदि गुण नहीं है, ये अभी यहाँ पर सिद्ध किया गया। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा ना विशेष गुणत्वात्, माने बुद्धि आदि जो है ये विशेष गुण है, ये साधारण गुण नहीं है, सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण नहीं है। अब ये विशेष गुण ही है, साधारण गुण नहीं है, इस बात को अब यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि बुद्ध्यादयस्तु विशेष गुणाः। बुद्धि आदि जो है ये विशेष गुण ही है, ये सामान्य गुण नहीं है, साधारण गुण नहीं है। अब इसमें हेतु क्या दिया कि गुणत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत्, ताकि बुद्धि आदि जो है वो विशेष गुण है, विशेष गुण क्यों है? क्योंकि इसमें गुणत्व भी है और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व भी है। तो जिसमें जिसमें गुणत्व रहता है और जिसमें जिसमें एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व रहता है उसी को हम विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, देखिए गुण किसको कहते हैं, तो उसके लिए बताया गया था ना कि अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, पहले वाले पाठ के अनुमान में बताया गया था, जिसमें अनित्यत्व हो और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व हो वह जो है वह गुण होता है। और यहाँ विशेष गुण के लिए बताया गया कि जिसमें गुणत्व हो और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व हो वह विशेष गुण होता है। यहाँ पर अनित्यत्वे सति के बदले गुणत्वे सति बताया गया है। तो अगर आपको परीक्षा में भी पूछे कि विशेष गुण किसे कहते हैं, तो यही लिखना है गुणत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वम विशेष गुणत्वम। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि बुद्धि आदि जो है ये साधारण गुण नहीं है, ये विशेष गुण है। इसको सिद्ध किया जाएगा आगे, तो वही सिद्ध किया कि बुद्धि आदयस्तु विशेष गुण, हाँ बुद्धि आदि विशेष गुण है। क्यों? तो गुणत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, गुण इसमें गुणत्व भी है बुद्धि आदि में और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व भी है, इसलिए ये विशेष गुण है। अतो नौ दिगादि गुणा, हाँ विशेष गुण चुकी ये हैं, इसीलिए ये दिक आदि के गुण नहीं हो सकते। दिक आदि द्रव्य में रहने वाले ये गुण नहीं हो सकते। दिक आदि से लेना है काल को और मन को, माने दिक रूपी द्रव्य में, काल रूपी द्रव्य में और मनोरूपी द्रव्य में ये बुद्धि आदि जो है विशेष गुण होने के कारण इसमें आश्रित नहीं हो सकते। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो आठ द्रव्य हैं इसमें ये गुण नहीं रहेंगे, तो फिर आगे क्या होगा बताते हैं। तस्मात एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्त, इस कारण से क्योंकि विशेष गुणत्व होने के कारण दिक आदि में नहीं रह सकता और मानस प्रत्यक्ष होने के कारण भूत में, पृथ्वी आदि जो भूत है उसमें नहीं रह सकता, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्त, इन आठों द्रव्यों से कोई एक ऐसा अतिरिक्त द्रव्य है, कोई भिन्न द्रव्य है जो भिन्न द्रव्य की बुद्धि आदि गुणों का आश्रय है। ये क्लियर हुआ, क्योंकि जो विप्रतिपन्न बुद्धि वाला है उसको जो है ना अनुमान से ही उसको सिद्ध करना है ना कि आत्मा जो है होती है, शरीर इंद्रिय सबसे अलग चीज होती है, तो उसके लिए यही तरीका इन्होंने बताया कि पहले उसमें गुणत्व सिद्ध करिए। गुणत्व सिद्ध करने के बाद ये सिद्ध, मतलब ये तो वो भी मानेंगे विप्रतिपन्न वाले भी कि गुण है तो वह किसी द्रव्य में ही रहेगा, ये तो सब मानते हैं, इसलिए पहले गुणत्व सिद्ध करिए और गुणत्व सिद्ध करने के बाद ये सिद्ध करिए कि आठ प्रकार के जो द्रव्य हैं उनमें ये गुण आश्रित नहीं रहते हैं, और उसमें कारण बताया गया। और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि आठ प्रकार के द्रव्य में नहीं रहता है, तो फिर नवा द्रव्य जो है वो भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ नवा कोई द्रव्य है जिसमें ये बुद्धि आदि गुण रहते हैं, और वो नवा द्रव्य कौन है, तो आत्मा नाम का द्रव्य है। वही कहा कि तस्मात एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्त, इन आठों से अलग कोई द्रव्य है जो कि बुद्धि आदि नाम गुणानाम आश्रय, जो कि बुद्धि आदि गुणों का आश्रय है, इति वक्तव्य, ऐसा उनको कहना पड़ेगा, ऐसा उनको मानना पड़ेगा। स एव आत्मा, और वही जो नवा द्रव्य है वही जो है वह आत्मा है। इस प्रकार आत्मा नाम का जो नवा द्रव्य है उसको इन्होंने सिद्ध किया। और फिर आगे फिर प्रयोगश्च कह करके यहाँ पर प्रयोग बताएंगे कि अनुमान का कैसा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रयोग को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।